हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 13। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपरान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारुण्बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्कथेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांसं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरि हरि। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तीसरा अध्याय, पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 13। कृपया इन दिव्य शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आज सुत गोस्वामी भगवान के 8वें अवतार के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं, अष्टमी मेरु देव्याम तु नाभिजात उरुक्रम दर्शयन वत्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमी मेरु देव्याम तु नाभिजात उरुक्रम दर्शयन वत्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमी मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन वत्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमी मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन वत्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमी मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन वत्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमी मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन वत्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमी मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन वत्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। अष्टमी मेरु देव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन वत्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्। शब्द का अर्थ देखेंगे। अष्टमी अर्थात 8वां अवतार मेरु देव्यायाम, मेरु देवी यानी मेरु देवी के गर्भ से, तो उसके गर्भ से नाभिर यानी राजा नाभि की जात यानी जन्म हुआ। उरुक्रम अर्थात सर्वथा शक्तिमान भगवान। अब भगवान के 8वें अवतार की सूची देते हुए कहते हैं कि उनकी माता का नाम मेरु देवी था और पिता का नाम राजा नाभि, और वो कैसे थे, उरुक्रम बहुत शक्तिमान थे। दर्शयन वर्त्म धीराणाम, और उन्होंने क्या कार्य किया, दर्शयन मतलब दिखाया, वर्त्म यानी रास्ता या मार्ग, किसको, धीराणाम, धीराणाम मतलब सिद्ध लोग, और सर्व सर्व मतलब सभी, आश्रम यानी जीवन के जितने भी आश्रम हैं, कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, नमस्कृता, उनको समान दरित यानी वंदनीय है उनके लिए और उनकी वंदना करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणानंद श्री श्री शीला भक्ति शील प्रभुपाद जी महाराज की द्वारा। शील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ जो राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया जिसका अनुगमन इंद्रिय संयमी तथा समस्त आश्रमों के वंदनीय लोग करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मानव समाज जीवन के आश्रमों तथा स्तरों के अनुसार स्वभावतः 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक, 4 सांस्कृतिक उत्थान के से संबंधित है। अब वृत्तिपरक यानी बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और श्रमजीव वर्ग। यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग कौन से होते जानते हैं? ये होते हैं जो सबको बुद्धि प्रदान करते हैं, यानी ब्राह्मण। उसके बाद शासक वर्ग यानी जो शासन करते हैं, यानी क्षत्रिय। उत्पादक वर्ग यानी जो अनाज, जो वैश्य होते हैं ना, उनको बोलते हैं उत्पादक वर्ग। और श्रमजीवी वर्ग यानी जो शूद्र होते हैं उनको कहा जाए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वृत्तिपरक है, ये 4 वृत्तिपरक वर्ग है। और 4 कौन से? सांस्कृतिक उत्थान के संबंध, यानी विद्यार्थी, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ एवं सन्यासी। यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये कौन से? सांस्कृत। इसमें रहकर, ये आश्रम है, इसमें रहकर आपको क्या करना है? भगवत प्रीति सीखनी है। तो ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृत उत्थान के 4 सोपान है। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। जितने भी वर्ण और आश्रम हैं, उन सबका गुरु कौन होता है? सन्यासी। सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं। कुटीचक, बहुदक, परिव्रजक आचार्य तथा परमहंस। ये 4 सन्यास आश्रम में भी ये 4 अवस्थाएं होती हैं। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था है। सभी इस आश्रम का आदर करते हैं। राजनाभि तथा मेरु देवी के पुत्र महाराजा ऋषभ भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया। क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई ये नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध होगा। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थाई तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर भी भोगते हैं। कोई भी पशु, पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। प्रत्येक योनि में, जिसमें मनुष्य योनि भी सम्मिलित है, ऐसा सुख प्रचुरता से उपलब्ध होता है। किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते सुख के निमित्त नहीं मिला है। मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के द्वारा नित्य तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। यह आत्म साक्षात्कार तपस्या तथा भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, वे धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा न विचलित होने वाले व्यक्ति हैं। केवल ऐसे ही धीर व्यक्ति सन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं और क्रमशः परमहंस को प्राप्त करते हैं, जिसकी पूजा समाज का हर व्यक्ति करता है। राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, परंतु सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय हो। तो आज इस श्लोक में हमने भगवान से भगवान के आठवें अवतार के विषय में पढ़ा। इनका नाम था ऋषभदेव। तो इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारणम्। भगवान ऋषभ ने इस संसार में अवतार लिया। वैसे तो भगवान के सारे ही अवतार इस संसार में जब अवतार लेते हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से लेते हैं। अधिकतर भगवान ने कहा कि मैं आता हूँ परित्राण साधु नाम विनाशय से दुष्कृतम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। भगवान का मेन पर्पज है अपने भक्तों को प्रेम आस्वादन करना, उनकी रक्षा करना। परंतु भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम आस्वादन करने के लिए आते हैं और असुर क्योंकि उसका विरोध करते हैं तो उनका वध करना पड़ता है भगवान को। तो यानी किसी न किसी असुर का वध करने के लिए आते हैं, जैसे राम रावण का, नरसिंह हिरण्यकश्यपु का, वृह भगवान हिरण्याक्ष का और कृष्ण ने वध किया कंस का। भक्तों क्या आप जानते हैं कि भगवान ने ऋषभ अवतार क्यों लिया था? वो भी इस संसार में असुर का वध करने के लिए प्रकट हुए थे, परंतु वो असुर कोई स्थूल नहीं था, वह सूक्ष्म असुर है जो हम सबके मन और बुद्धि में अज्ञान के अंधेरे के रूप में विराजमान है। वास्तव में जीव परम आनंद सच्चित आनंद भगवान का अंश है, उसके लिए कोई दुख नहीं, क्योंकि जिस प्रकार भगवान सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है, उसी प्रकार जीव जो कि भगवान का अंश है वो भी सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है, परंतु वो फिर भी सदैव दुखी है। दुख को भोगने के लिए ही संसार, भगवान ने कह दिया कि ये संसार बनाया मैंने दुख को भोगने के लिए। वो क्यों? क्योंकि जीव अज्ञानता में है, वो अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गया है, इसीलिए वो संसार में दुख भोगता है और सोचता है कि इसी संसार में उसे सुख प्राप्त होगा। ये संसार हमें भोग भोगने के लिए प्राप्त हुआ है, ऐसा सोचता है जीव। और हम सुबह से रात तक संसारी वस्तुएं प्राप्त करने और उनको भोगने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, परंतु भगवान ऋषभ ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया वो एक आदर्श उपदेश है। तो उस उपदेश को सुनने से पहले हम भगवान ऋषभ के विषय में समझेंगे कि जो इस श्लोक में जो फर्स्ट लाइन है, अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभे जात उरुक्रम, अष्टमे अर्थात आठवां अवतार कहाँ से हुआ? मेरु देव्याम तु, मेरु देवी के गर्भ से। और किसके यहाँ पर? नाभे जात उरुक्रम, नाभि राजा के घर में। और उरुक्रम, उरुक्रम का मतलब जानते हो आप? इसका उरु का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल। और क्रम का मतलब होता है स्टेप, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े स्टेप उठा सके। वैसे तो उरुक्रम पता है किसका नाम है? वामन देव है, क्योंकि उन्होंने बहुत विशाल स्टेप उठाए थे ना, स्टेप ना कदम, बड़े कदम उठाए थे। और भगवान ऋषभ को भी उरुक्रम कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भौतिक जीवन से बहुत बड़ा कदम उठाया और आध्यात्मिक जीवन में स्थित होकर दिखाया कि किस तरह से भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हुआ जाता है। और उन्होंने क्या कार्य किया वो नेक्स्ट लाइन में बताते हैं। दर्शयन वर्त्म गीराणाम, दर्शयन मतलब मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन किया किसका? धीराणाम। धीराणाम का मतलब क्या है जानते हो? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि वो धीर कैसे होते हैं। मतलब भगवान ने जब धीर व्यक्ति के विषय में बताया तो फिर अर्जुन ने पूछा श्लोक नंबर 54 में, 2.54 में अर्जुन ने पूछा, स्थित कज्ञ से का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित धीर किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भगवान से अर्जुन ने कहा आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी जो धीर व्यक्ति हैं, जो स्थित प्रज्ञ हैं, उनके क्या लक्षण हैं, वे कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा कैसी है, वे किस तरह से बैठते। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने बहुत बहुत सुंदर उदाहरण दिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। 15-17 श्लोक भगवान ने सिर्फ ये धीर व्यक्ति को समझाने, भगवान ने बताया प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट इसित प्रज्ञोच्यते। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त किया, यानी कि जिसके अंदर भौतिक कामना का लेश मात्र भी न हो उसे स्थित प्रज्ञ या धीर कहा जाता है। सुखेश्वर दुग्न मनाहा, दुखेश्वर दुग्न मनाहा, सुखेश्वर विगत श्रिया वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। जो प्रिय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थित धीर मुनि कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बहुत सुंदर बताया और इस तरह से बताया कि जो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ की प्राप्ति से घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। और जिस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, कछुआ जिस तरह अपने अंगों को समेट देता है, उसी तरह से धीर व्यक्ति भी विषय के और अपने अंगों को अपने इंद्रियों को आकर्षित होने नहीं देता है। बहुत बहुत सुंदर भगवान ने धीर व्यक्ति के विषय में बताया। और उपदेश अमृत के प्रथम श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी धीर व्यक्ति के विषय में अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, कहते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्त वेगम एतान वेगान्यो विषहे तदीयः। यानी जो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्त वेगम, जो इन छह वेगों को रोक सकता है, एतान वेगान्यो विषहे तदीयः, यानी जो अपनी जबान के वेग को, जिह्वा हर वक्त कुछ खाना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है तो उसका वेग है ना ये, तो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको कुछ भी नहीं बोलने देता, केवल कृष्ण के विषय में बोलने की आज्ञा देता है, कृष्ण के भक्तों की चर्चा करने में और कृष्ण के विषय में कृष्ण से संबंधित वाक्य को बोलने के लिए उसको आज्ञा देता है। केवल जिह्वा सदैव चाहती है कि मैं ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, लेकिन उसे केवल कृष्ण प्रसाद खाने की ही अनुमति देता है। मनस, मन सदैव चिंतित रहता है लेकिन मन को भी, मन के वेग को कंट्रोल करता है। कैसे? मन त्रायते इति मंत्र, वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करता है जिससे उसका मन का वेग भी रुक जाता है। क्रोध वेगम, क्रोध के वेग को रोकता है। क्रोध वेगम उदरोपस्त वेगम, पीठ को जनन इंद्रिय के वेग को रोकता है। एतान वेगान यो विषहेत, जो इन समस्त रोगों वेगों को रोक सकता है वो क्या है? धीर है। और वो क्या कर सकता है? सर्वम अपि मां पृथ्वीम सशेषात, वो इस सृष्टि में इस जहां पर भी चाहे वो शिष्य बना सकता है। जिसने अपने को कंट्रोल नहीं किया उससे कोई आवश्यकता नहीं है शिष्य बनाने की, उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है कि वो किसी को शिष्य बनाए। अगर कोई गुरु बनने के योग्य, अगर कोई गुरु बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने इन वेगों को रोकना है, उसे क्रोध की वेगों को रोकना है, मन की क्रियाओं को रोकना है, वाचो वेगम को रोकना है और अपनी जनन इंद्रिय के वेग को रोकना है। यदि वो ऐसा कर सकता है तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि तो वो क्या कर सकता है, सर्वमपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्, वो इस पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है। और ऋषभ देव ने क्या किया था, ऐसे जो धीर है जिन्होंने समस्त वेगों को रोका हुआ है, जिनको भौतिक कामना नहीं है कोई भी, जो अपनी समस्त इंद्रियों के विषयों से खुद को अनासक्त कर चुके हैं, दर्शयन वर्तमधीराणा, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन किया था, ऐसे धीर व्यक्तियों का मार्गदर्शन किया था। और आगे सर्वाश्रम नमस्कृतम, और जो ऐसे धीर व्यक्ति होते हैं यानी सन्यासी जो होते हैं, तो समस्त जितने भी वर्ण आश्रम हैं वो उनका ना सादर आदर करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सन्यासियों के विषय, अब वर्ण आश्रम के विषय में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पर कि चार आश्रम होते हैं, चार वर्ण होते हैं, जिनके अनुसार हमने बहुत बहुत पढ़ा। अरे इसमें एक और चीज बताई भगवान ने सन्यास आश्रम के विषय में कि सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था की भी चार अवस्थाएं होती है। ऐसा नहीं कि सन्यास ग्रहण कर दिया अब जैसे ब्रह्मचर्य से क्या करना है, अगर ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट कोई मतलब अगर वो अपने वेगों को बिल्कुल कंट्रोल कर चुका है, उसे गृहस्थ आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं, ये क्यों उसको सहूलत दी गई है वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, कि यदि वो अपने मन को टिका नहीं पा रहा है, उसको कोई इंद्रिय भोग की इच्छा है अब तक तो करके देख ले, बल्कि लेकिन साइड से उसको करके फौरन उसको आगे बढ़ना, ऐसा नहीं गृहस्थ आश्रम में ही चिपक के बैठ जाना है। हमारी सिद्धि ये नहीं है, आगे बताया श्री प्रभुपाद ने कि ये जो निम्न सुख होता है वो तो पशु पक्षी सुअर और कुत्तों को भी है ना पर्याप्त प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, तो मनुष्य जीवन इसके लिए थोड़ी ना मिला है। तो संन्यास अब अगर डायरेक्ट से नहीं कर सकते तो क्या करना है, गृहस्थाश्रम, और गृहस्थाश्रम से फौरन 50 तक भी, यानी कि अगर हम अब देखते हैं ये तो तब के लिए है जब जीव जो है वो डेफिनेटली 100 ईयर्स जिए, है ना। अब यहाँ पर हमारी उम्र ही नहीं है, 50 साल 70 के बाद तो आगे जाती ही नहीं है, तो फिर जितना जल्दी हो जाए वानप्रस्थ और फिर संन्यास को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये सिद्धि है संन्यास तक पहुँचना है, और संन्यास में भी चार अवस्थाएं बताई जिसमें कुटी चक बहुधक यानी प्रथम है, उसके बाद और उसके बाद है प्रव्रजक आचार्य, परिव्राजक आचार्य। परिव्राजक आचार्य जानते किसको बोलते हैं, जो एक जगह पर टिकते नहीं है, यानी कि वो सदैव सफर करते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे जाकर प्रचार करते हैं, और उससे आगे है परमहंस। और इस तरह से हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी को ये दोनों उपाधियां, जैसे हम कहते हैं ना ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य, ये दोनों श्री प्रभुपाद जी के विषय में कहा जाता है कि वो परिव्रजक आचार्य भी थे और परमहंस भी थे। तो ये संन्यास में सिद्धि की चरम अवस्था है, बाकी इस आश्रम का सब आदर भी करते हैं। इसलिए कहा ना कि जितने भी हैं सर्वाश्रम नमस्कृतम, वो उनका आदर करते हैं। तो ऋषभ देव ने ऐसे महान जो धीर व्यक्ति हैं उनको शिक्षा दी। ऋषभ का मतलब जानते हैं हम, ऋषभ के दो अर्थ होते हैं, एक तो बैल होता है ना, लेकिन यहाँ पर बैल के अर्थ में नहीं, हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में ऋषभ भरत ऋषभ ऋषभ अक्सर बोला है, और ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी भगवान कहते हैं हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ। तो ये जो ऋषभ यहाँ पर भगवान का अवतार है वो श्रेष्ठ व्यक्ति, यानी जितने भी दूसरे जितने भी संन्यास आश्रम में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ ऋषभ देव। और ऋषभ का मतलब सुंदर भी होता है, गोपियां कहती गोपी गीत में भगवान से ऋषभ ऐसे बताते हैं कि आप इतने श्रेष्ठ हैं, आप इतने सुंदर हैं, तो ये ऋषभ देव अत्यंत ही सुंदर। अच्छा इनका विवाह जानते किसके साथ हुआ था? इंद्र की बेटी जयंती से उनका विवाह हुआ था। इंद्र की बेटी जयंती से उनका विवाह हुआ था और उससे उनको 100 पुत्र हुए थे। अच्छा एक बार क्या हुआ, इंद्र का दिमाग खराब हो गया था। मतलब इंद्र क्या करता है, जब कभी भगवान असल में दिखाने के लिए भगवान की लीला ही होती है, हमें नहीं बोलना चाहिए, देवता है वो, भगवान के परम भक्त है वो, जब भी आते हैं ना भगवान उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, यानी कि जीव मात्र को दिखाते हैं भगवान इंद्र के जरिए कि देखो वो नहीं समझ पाया मुझे, तुम ही क्या समझोगे। तो इंद्र ने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं क्योंकि वर्षा करता हूँ उसी के कारण सब अन्न उत्पन्न होता है, उसी के कारण जीव मात्र का जीना संभव होता है, तो मैं क्या करूंगा भूमंडल पे वर्षा करना बंद, आज मैं भूमंडल पे वर्षा नहीं करूंगा ताकि अनाज भी उत्पन्न नहीं होगा, फिर देखते हैं क्या करता है भगवान। तो अब ऋषभ देव ने जब देखा कि इंद्र ऐसे कर रहा है तो फिर उनको क्या जरूरत थी इंद्र की वर्षा की प्रतीक्षा करने की, उन्होंने क्या किया क्योंकि ऋषभ देव स्वयं भगवान थे, वो कर सकते थे, वो समर्थ थे, उन्होंने अपनी शक्ति से ही अपने राज्य में वर्षा कर दी। और इस प्रकार राज्य में जब वर्षा हो गई तो फिर इंद्र को लगा कि हाँ ये वाकई भगवान है जो सब कुछ कर सकता, तो फिर इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और फिर अपनी बेटी जयंती के साथ उनका विवाह करवाया और उसमें से उनको 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें से अधिकतर में कहें तो 88 में से 88 जो है वो ब्राह्मण गुण को धारण करके पैदा हुए। ब्राह्मण गुण को अर्थात वैसे तो ऋषभ देव क्षत्रिय थे, वो राजा थे ना, ऋषभ देव के पुत्र मतलब वो राजा किसे बेटे थे, नाभि राजा के बेटे थे, तो राजा तो क्षत्रिय होते हैं लेकिन उनके जो पुत्र थे 88 पुत्र वो क्या हो गए, पैदा होते ही ब्राह्मण बन गए कि भाई हमको ब्राह्मण गुण के साथ ही वो पैदा हुए थे। और उसके बाद 9 पुत्र योगेंद्र, इसकी बहुत ही विख्यात कथा आती है भागवतम में, 9 योगेंद्र को ऋषभ देव का जो उपदेश है अत्यंत ही सुंदर है। और बाकी एक पुत्र जो है वो है महाराजा भरत। महाराजा भरत के विषय में आपने सुना होगा अक्सर, ये वही महाराजा भरत है जिनके नाम से भारत वर्ष, ये भारत भूमि को भारत कहा जाता है। और यही महाराजा भरत बाद में जड़ भरत बन गए थे, पहले क्योंकि महाराजा भरत ने क्या किया था, उन्होंने अब देखो ऋषभ देव के 100 पुत्र उनमें से 88 ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मचर्य डायरेक्ट से ब्राह्मण बन गए, और उसके बाद 9 योगेंद्र बन गए, उनमें से किसी ने भी राज्य नहीं संभाला, बाकी एक सिर्फ जो भरत राजा है उन्होंने केवल राज्य को संभाला। और उन्होंने भी केवल अपना कर्तव्य समझकर, अब के पिता का राज्य संभालने के लिए कोई नहीं है, उन्हें भी राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी पिता के राज्य को संभालना मेरा कर्तव्य है, यही सोचकर ही उन्होंने राज्य संभाला। और इसके बाद जब भरत राजा भी राज कर रहे थे तो उनको जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो अपना पूरा राज्य अपने पुत्र को देकर स्वयं वनवास में चले गए, वहां पर फिर हिरण में आसक्ति और उसके बाद हिरण का मोह में उनकी मृत्यु और फिर दूसरा हिरण का जन्म और उसके बाद जड़ भरत का जन्म, इसका वर्णन हम पढ़ेंगे आगे कि उन्होंने राजा रघुगण को बहुत ही उत्तम उपदेश दिया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि महाराजा नाभि के पुत्र ऋषभ देव उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, अत्यंत ही सुंदर उपदेश जो शास्त्रों में बिल्कुल अमर है, इतना आदर्श है, ऐसा किसी पिता ने आज तक अपने पुत्र को उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अहर्ते वित्त भुजाम नायम देहो देह भाजाम निर्लोके। यानी ये जो निरी देह, ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो कष्टान कामान अहर्त वित्त भुजाम, ये तुमको इसलिए नहीं मिला है कि इस संसार में कुत्ते और सुअर की तरह बैल के समान। तो वित्त भोजन का क्या मतलब होता है, जो मल खाने वाले सुअर होते हैं ना, उनकी तरह भोग भोगने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। ये जो नर देह है, ये जो मनुष्य जीवन है, वो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ऐसा मत करना कि उसको तुम ऐसे ही जाया कर दो, पशुओं की तरह जीवन बिताते बिताते। तो मानो उनके पुत्रों ने पूछा, अच्छा पिताजी फिर बताइए ये मनुष्य देह क्यों मिला है। तो उन्होंने कहा, ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, ये तपो दिव्यम, ये मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए, मैं तपस्या, और तपस्या भी कैसी दिव्यम। कुछ लोग इस तपस्या, जो ऋषभ देव का जो ये तपस्या, ये तपो दिव्यम के, ये जीवन आपको केवल तपस्या के लिए मिला है, बस ये सुनकर ही आजकल एक पंथ चलने कला है जिसमें हजारों लोग केवल तपस्या करते हैं। एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें ऋषभ देव को अपना भगवान मानते हैं, और ऋषभ देव की इस बात को लेकर कि ए मेरे पुत्रों, ये जीवन तुम्हें तपस्या करने के लिए मिला है, इस बात को लेकर केवल तपस्या ही करते और कुछ नहीं करते। जो दीक्षा लेते हैं वो क्या करते हैं, अपने बालों से, अपने हाथों से अपने बाल नोच लेते हैं और नंगे पांव चलते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, परंतु ये लोग शास्त्र पर विचार नहीं करते। देखो भगवान ने जो बात कही है, भगवान ने जो कहा है, उस पर हमें चलना होता है। उन्होंने जो किया है उस पर नहीं चलना होता है। अब ऋषभ देव ने दिव्य तपस्या, उन्होंने अजगर वृत्ति से संन्यास ग्रहण किया था, मतलब वो एक ही जगह पर पड़े रहते थे, कोई कार्य नहीं करते थे, अगर कोई देख कर जाता था तो खाते थे, वहीं पर विष्ठा आदि करते थे और वहीं पर है ना वो भोजन करते थे। लेकिन वो भगवान थे, वे भगवान थे, वो जो चाहे कर सकते हैं, वो दिव्य हैं, उनके शरीर से निकला हुआ हर अंग, उनके शरीर से निकली हर वस्तु दिव्य है, उनका विष्ठा भी, उनके जो मल है वो भी दिव्य है। ऐसा बताते हैं शुकदेव गोस्वामी, लिखते हैं भागवतम में कि हजारों मील माइल्स तक उसकी सुगंध आती थी, उनके ना उनके शरीर की इतनी सुगंध होती थी। लेकिन अब अगर हमारे जैसा कोई अपवित्र जीव इस तरह से करना शुरू कर देता है, तो फिर उनके आश्रम में तो जाना ही, ऐसे कोई जाएगा वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर विष्ठा कर रहे हैं, वहीं पर कोई सफाई वफाई का ख्याल नहीं रखते, और सोच रहे हैं कि हम महाराज भगवान ऋषभ देव का ना अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण नहीं करना होता, अनुसरण करना होता है, उन्होंने जो कहा है। अब देखिए ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को तपस्या करने के लिए कहा, परंतु कैसी तपस्या करने के लिए कहा, इस पर उनका कोई विचार नहीं है। इसलिए उनका जो संप्रदाय है वो बिल्कुल गलत है। भगवान ऋषभ देव कहते हैं ये तपो दिव्यम, यानी कैसी तपस्या करनी है, दिव्य तपस्या करनी चाहिए। परंतु दिव्य तपस्या कैसी होती है, दिव्य का क्या अर्थ है जानते हो, दिव्य का अर्थ होता है आकाश, और दिव्य का अर्थ होता है आकाश के ऊपर, वो तपस्या जो आध्यात्मिक जगत प्राप्त कराए। उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, और वो साधन क्या है जानते हो, वो साधन विरक्ति नहीं है, अनुराग है। यानी कि अब दो चीजें होती है, एक तो देखो वैराग्य होता है, एक अनुराग होता है। अगर हम ऋषभ देव का अनुकरण करके, यानी कि उनकी नकल करके वैराग्य करते हैं, तो ये हमारे वैष्णव संप्रदाय को स्वीकार्य नहीं है। हमारी जो वैष्णव संप्रदाय है वो तो हमें अनुराग सिखाता है। अनुराग का क्या मतलब होता है, इसमें भी क्या है, आपको दिव्य यानी आध्यात्मिक लोक प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कार्य करना है, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है उसको छोड़कर भागना नहीं है। भले ही हम मानते हैं कि ये सारी वस्तुएं जो कि संसार में है वो सब हमारे लिए कोई बेकार है, और इवन हमारा ये शरीर भी बेकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब को छोड़कर हमें भाग जाना है, इनकी कोई केयर नहीं करनी है, अपने कर्तव्य को छोड़ना, ऐसा नहीं करना है। बल्कि समस्त वस्तुओं को
भगवान की सेवा में लगाना है ना। जो कुछ भी हमारे पास है, धन है, ज्ञान है, घर है, जो संतान है, सबको भगवान की सेवा में लगाना है। और ये शरीर भी है उसको भी क्या करना है, भगवान की सेवा में अर्पण करना है। और जब सब कुछ भगवान को अर्पित हो जाए तो भगवान की अर्पण की हुई वस्तुओं में विशेष अनुराग और भी ज्यादा आ सकती है। जैसे किसी को अगर खाने की बहुत ज्यादा इच्छा है तो अगर वो खा रहा है इंद्रिय तो तृप्त करने के लिए, फिर तो वो क्या कर रहा है, अपराध करता है, ये भुंजते दे त्वम पापम। लेकिन यदि वो भगवान को अर्पण कर देता है उस प्रसाद को, फिर तो उसमें विशेष अनुराग हो जाता है। कभी प्रसाद ना आए हमें तो रोना चाहिए कि हमको क्यों नहीं मिला, यानी कि उस भोजन में मेरी कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन प्रसाद नहीं मिले तो रोना आ जाए भक्त को। ऐसे ही अगर किसी को कीर्तन जैसे सुनने का बहुत शौक है, तो भौतिक जो भी बातें होती हैं, जो बातें आपस में करते हैं या जो भौतिक जो गाने इत्यादि हैं वो नहीं सुनते, उनको सुनने में कोई अनुराग नहीं है। लेकिन कहीं कीर्तन हो और पता चले आज वहाँ इतना अच्छा कीर्तन हो रहा है और मुझे मेरा भाग्य नहीं है सुनने का, तो विशेष अनुराग। उसी प्रकार कुछ देखने का पता चले आज वहाँ पर इतना अच्छा दर्शन हो रहा है लेकिन मैं किसी कारण नहीं जा सकता, तो विशेष अनुराग हो जाता है अपनी इंद्रियों से भगवान के अर्पित की हुई वस्तुओं को। यानी ये होती है दिव्य तपस्या कि हम जो भी भौतिक भोग जो भी भोग कर रहे हैं वो भौतिक नहीं है बल्कि वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक कैसे हो गया, क्योंकि वो कृष्ण को अर्पित हो गया है, अब उस भोग में भी विशेष अनुराग हो गया है हमारा। तो ये है दिव्य तपस्या कि भौतिक कार्यों में कोई भी आसक्ति नहीं होगी लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में विशेष अनुराग होगा। और अगर तपस्या में दिव्य तपस्या में अगर हम जाएं तो सबसे बड़ी तपस्या आप जानते हैं कौन सी है, भगवान का पवित्र नाम लेना। ये जिह्वा का कार्य है, सदैव बोलना चाहती है, लेकिन वाचो विगम का मतलब होता है भगवान को बहुत जीवा को भौतिक वस्तुओं को बोलने की बदली में केवल भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं बोलने के लिए ही प्रेरित किया जाए। तो भगवान का नाम लेने में साधारण जीव को कितनी आलस होती है, कुछ कुछ प्रभु लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेने में इतनी आलस होती है, माला उठा हाँ माला में हाथ डालने का दिल ही नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे किसी ने माला के अंदर बिच्छू डाल दिया, मैं डालूंगा तो मुझे काट देगा। लेकिन भक्त को भगवान के पवित्र नाम जप करने में अत्यंत ही आसक्ति होती है। यह है दिव्य तपस्या जो हमें दिव्य लोक को ले जाएगी। और उसमें भी तपस्या में क्या होता है, तप का मतलब होता है कष्ट देना, अपने आप को अस्य को अपने ही जीवन को कष्ट देना कोई दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए, दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए। तो हम समस्त तपस्याओं में जो ऐसे कि हम कुछ नहीं खाते कुछ त्यागते हैं, तो आजकल तो हर दिन में एक तपस्या की जाती है, सोमवार को रखा जाता है और इतवार को रखा जाता है, शनिवार को रखा जाता है, हर वार को रखा जाता है। लेकिन इस दिव्य तपस्या में आती है एकादशी, एकादशी वार को रखना होता है क्योंकि ये दिव्य तपस्या है, ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। भगवान आज एकादशी का उपवास है और भगवान ने एकादशी महारानी को यह वरदान दिया था कि जो भी आज के दिन यानी एकादशी के दिन उपवास रखेगा वो मेरा प्रिय होगा, उसे शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, तो उसे ही दिव्य जगत प्राप्त होगा। ये है दिव्य तपस्या जो कृष्ण को प्राप्त कराने के लिए, बहुत कृष्ण को प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन है, वेदेषु दुर्लभ, कृष्ण को प्राप्त करना वेदों के जरिए तपस्या के जरिए अन्य अन्य चीजों के लिए जो जंगल में चले जाते हैं उनके जरिए बहुत कठिन है, लेकिन केवल भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान की कथाओं का श्रवण और एकादशी का उपवास करने से भगवान को अत्यंत ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ये दिव्य तपस्या जो कि ऋषभ देव जी का आदेश है, क्या करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है और भगवान के इस पवित्र परम प्रिय दिवस यानी एकादशी महारानी के दिन उपवास करना है। कृपया साथ रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।